राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। सो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं और गणेश परिवार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज भगवत कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा और हरि कीर्तन का आयोजन किया है। ये दिसंबर का महीना, हरे कृष्ण, ये दिसंबर का महीना भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता के प्रकट होने का महीना है। इस महीने में भगवत गीता का प्रकट्य हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। मोक्षदा एकादशी 17 तारीख को शुक्रवार को आएगी, उसको बोलते हैं मोक्षदा एकादशी, मोक्ष देने वाली एकादशी। मोक्ष देने वाली का मतलब दुख से मुक्त करने वाली, और मोक्ष का अर्थ दूसरा है स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति का मतलब हमारी अपने जो पहचान है उसमें हमको स्थित कर दे। कौन करता है इस एकादशी दान का नाम ये क्यों है? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता दी जो हमारे को दुख से मुक्त करेगी और हमारे अपने स्वरूप में हमको स्थित करेगी। भगवत गीता का प्रकट्य हुआ है इस महीने में, और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान के मुख की वाणी है। उस भगवत गीता के कुछ श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे जो आपके और हमारे जीवन में काम आएंगे। गीता जीते जी जिंदे रह, जब हम जीते हैं जी रहे हैं तब हम कैसे सुखी रहें उसका शास्त्र है। मरने के बाद कुछ मिलेगा ये गीता का उद्देश्य नहीं है, गीता जिंदा जीते जी सुख से जीने का शास्त्र है। तो हम आपको 17वें अध्याय भगवत गीता से कुछ श्लोकों का भाव सुनाएंगे कि जीते जी ये काम आते हैं। भगवान पहले तो ये कहते हैं तीन चीजों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। 18वें अध्याय में बोलते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्यजेम। यज्ञ करना, कौन सा यज्ञ करना? हमारे घर में और नहीं तो एक यज्ञ सब करते हैं, विवाह यज्ञ है, शादी करते हैं ना उसको विवाह यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ तप, तपस्या करना, और दान कर्म न त्यजेम, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्या करते हैं? पावनानी मनीषिणाम, जो मनीषी हैं, जो मननशील हैं, जो महात्मा हैं, उनको ये पवित्र करने वाले हैं। ये तीन कर्म करने चाहिए, और तीन कर्म नरक के अंदर ले जाते हैं। काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये तीनों नरक में ले जाते हैं। काम क्रोध लोभ नरक के दरवाजे हैं। तो आज सिर्फ हम तप के ऊपर चर्चा करेंगे, तपस्या। भगवान श्री कृष्ण पहले कहते हैं तपस्या सबको करनी चाहिए, और फिर 17वें अध्याय में तपस्या के तीन बताते हैं तपस्याएं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। ऑस्टिलिटी ऑफ बॉडी स्पीच एंड माइंड। हरे कृष्णा, ये सबके पास है कि नहीं? सबको शरीर है ना, तो शरीर की क्या तपस्या, ये सुन लीजिए। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। शरीर की तपस्या क्या है? गुरु देव प्रज्ञा पूजनम। शरीर से भगवान की पूजा करनी चाहिए, गुरु ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए, और अपने बड़े माता पिता आदि बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको उनकी सेवा करके सम्मान करना चाहिए। ये शरीर की तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या है कि हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना चाहिए। तपस्या का मतलब वॉलंटियरली अपनी इच्छा से स्व इच्छा से थोड़ा कष्ट सहना, ये तपस्या बोलते हैं। तपस्या का मतलब कष्ट सहना, अच्छा नहीं लगता है फिर भी करना चाहिए। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम, देव द्वेज, द्वेज कहते हैं ब्राह्मण को, द्वेज, द्वेज मतलब जिसके दो जन्म हो, दो जन्म, हम सबका एक जन्म होता है माता पिता से, वो तो सबका है ही, उसका ऋण उतारना पड़ता है, उसको पितृ ऋण बोलते हैं, सबको इस पितृ ऋण को उतारना पड़ता है। और एक शरीर, एक जन्म होता है गुरु और शास्त्र माता से, गुरु पिता और शास्त्र माता। पुराने जमाने में बच्चे पढ़ने गुरु के पास जाते थे, तब गुरु उनको दीक्षा देकर जनेऊ डालता था, उसको बोलते हैं द्वेज बनाया, अब गुरु पिता हो गया, शास्त्र वेद पढ़ेगा वो माता हो गई, उसको द्वेज बोलते थे। तो द्वेज में ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, वैश्य भी द्वेज में आता है। और यहां द्वेज का अर्थ है ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। जिस समाज में ब्राह्मण का सम्मान नहीं है वो समाज नष्ट हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण मार्गदर्शन करता है, शिक्षा देता है, घर परिवार के हर एक कार्य में आके ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। देव द्वेज गुरु, और गुरु शिक्षा देने वाला, उसको हमेशा सम्मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और फिर प्रज्ञा, जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे माता पिता आदि है, वेद शास्त्र कहता है जो ये ऐसा शरीर का तप करता है उसको बल बुद्धि विद्या, बल का मतलब शक्ति, बुद्धि इंटेलिजेंस, विद्या एजुकेशन से ज्यादा है विद्या, ये सब प्राप्त होता है। और जो ये तपस्या नहीं कर सकता है उसके पास ये बल बुद्धि विद्या आदि नहीं रहते हैं, इससे हीन हो जाता है, इससे वंचित हो जाता है। और फिर शौचम, शरीर का दूसरा तत्व है पवित्र, सोच, सोच कहते हैं पवित्रता को, सोचम का मतलब पवित्र रहना, पवित्र शरीर को कैसे रखना चाहिए, बाहर से पवित्र रखने के लिए रोज स्नान करना है, एवरी डे स्नान करना है, ये शरीर को बाहर से पवित्र, अंदर से पवित्र कैसे करेंगे, बाहर से तो सब शरीर को पवित्र करते हैं ना, अंदर से कैसे पवित्र करेंगे, कचरा बाहर ज्यादा है अंदर ज्यादा है, बाहर थोड़ी सी मिट्टी है झाड़ने से उतर जाएगी, अंदर कितने जन्मों का कचरा भरा हुआ है, कौन सा वाला कचरा अंदर में भरा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये सब दूसरे की बुराई करना, कितना कचरा अंदर भरा हुआ है कि नहीं है, अंदर की सफाई कैसे होगी, साबुन से शैंपू से बाहर शरीर को तो साफ कर लेते हैं, सुबह सवेर पेस्ट करके दांत साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर दिल के अंदर कचरा भरा हुआ है मन, उसको कैसे साफ करेंगे, वो पवित्रता कैसे होगी, भगवत नाम लेने से मन पवित्र, हरि नाम लिए, रोज भगवान का नाम जपना चाहिए अंदर को पवित्र करने के लिए, जैसे रोज स्नान करना जरूरी है ऐसे रोज दांतन करना जरूरी है, टूथब्रश करना जरूरी है रोज, ऐसे रोज भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। ये अंदर को शौचम, अंदर को पवित्र करता है, सबको करना चाहिए, सब स्नान करते हैं कि कोई कोई करता है, सभी करते हैं ना, तो सब स्नान करते हैं तो सबको भगवान का नाम भी लेना चाहिए ना, क्योंकि कचरा तो सबके बाहर, रोज स्नान के लिए तो अंदर भी तो है ना, कितना कचरा अंदर है कुछ मालूम है किसी को, अपने अंदर जाके देखो कितना कचरा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा कचरा है अंदर में, पता नहीं लगता है लेकिन बहुत ज्यादा है। एक तो अहंकार है हमने ये किया, और दूसरा उसने हमारी बुराई की, ये दो चीजें हम अंदर पकड़ के बैठे होते हैं, मैंने इसका इतना अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा किया, एक तो ये अपने अहंकार को पकड़ के बैठते हैं और दूसरा उसने मुझसे ये बुरा किया, उसने मुझसे ये बुरा किया, उसने मुझसे ये बुरा किया। किसको याद करते हैं? एक अपने को याद करते हैं कि मैं बड़ा आदमी हो गया, और दूसरा जो हमको बुरा लगता है उसको याद करते हैं। इन दोनों को भुलाकर भगवान को याद करना चाहिए। सबसे ज्यादा आदमी किसको याद करता है? हाँ, जिसको नहीं चाहता है उसको हमेशा याद करता है। देखा, ये नहीं मेरे को मिलेगा, मैं इसको देखूंगा, इसका मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन सारा दिन उसी को याद करता है। हाँ, जिसको नहीं चाहता है उसको दिल में बिठा के बैठा है, आंखों से देखना नहीं चाहता, दिल में बिठा के बैठा है। मूर्ख है कि नहीं? ये अंदर सफा करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र वेदों का मंत्र है, कलि संत्र ने उपनिषद का मंत्र है, ब्रह्मा जी जिसने ये सृष्टि बनाई है उसने इस मंत्र को जपने का आदेश दिया है। ये पिता ब्रह्मा का आदेश है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया है, किसी आदमी के द्वारा ये नहीं बोला गया है, ये ब्रह्मा जी ने कलि संत्र ने उपनिषद वेद के अंदर नारद को बताया है। कलयुग के लोगों के दुख ताप संताप को दूर करने का, अंतःकरण को शुद्ध करने का, भगवान के पवित्र 16 अक्षर के नाम का उच्चारण अति आवश्यक है, अनिवार्य है। अति आवश्यक का मतलब सबको करना चाहिए। जैसे खाना रोज जरूरी है कि नहीं है? मौजे पक्का? कितने बार खाते हो? तीन बार खाते हैं, और वेद कहता है तीन बार संध्या वंदन करो। संध्या वंदन, वंदन करने का मतलब भगवान की प्रार्थना करनी, और संध्या का मतलब तीन टाइम संध्या होती है। सुबह सवेरे सूरज नहीं उगा है और तारे चले गए हैं, नो स्टार डिसअपीयर, सन हैज नॉट येट राइजन, उसको बोलते हैं प्रातःकाल संध्या, ब्रह्म मुहूर्त का समय उस संध्या है, उस वक्त बैठ के भगवान का नाम जपना चाहिए। दूसरी संध्या होती है सायंकाल संध्या, सूर्यास्त हो गया है, तारे नहीं निकले हैं, सनसेट हो गया है, अभी तक स्टार नहीं है स्काई में, उसको बोलते हैं सायंकाल संध्या, और दोपहर को 12 बजे को मध्याह्न संध्या बोलते हैं। और हर व्यक्ति जो द्वेज है वो गायत्री मंत्र इस तीन टाइम पे जपता है, सुबह सूरज उगने से पहले, दोपहर को 12 बजे, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद 6:30-7 बजे, ये संध्या का टाइम है। तीन बार खाना है तो तीन बार भगवान का नाम भी लेना चाहिए, लेकिन तीन बार कहां खाते हैं? यहां तो जहां चलते हैं रास्ते में खाते रहते, जहां देखो चलते चलते खाते। अरे चलना खाना मूर्खता है, तो पशु का काम है, चलते चलते कौन खाता है? आदमी नहीं खाता है, एनिमल खाता है चलते हुए। एक बार ब्रह्मा जी ने जब सबको बनाया तो एनिमल भाग के आए, ब्रह्मा जी को बोला बाबा भूख लगी है क्या करें? बोला जो मिले जहां मिले जाओ पेट भर के खाओ। तो बेचारे को जो मिल गया वहां खाने लगा। आदमी ने कहा हमको भूख लगी है हम क्या खाएं बाबा? बोला सुबह खाओ शाम खाओ बस, टाइम से खाओ नेम से खाओ। अरे आदमी ने बोला हमारे लिए नेम? अच्छा बाबा आप बोलते हैं करते हैं। कल युग आया, आदमी ने बोला कमाल है, ब्रह्मा जी जानवर को बोलता है, एनिमल को बोलता है जब चाहे तब खाओ, पर हमको बोलता है केवल दो टाइम, क्योंकि हम एनिमल से कम है क्या? हम भी सारा दिन खाएंगे, खड़े खड़े केवल भगवान का चरणामृत ले सकते हैं, और प्रसाद अगर खड़े खड़े मंदिर में मिले तो खा सकते हैं, और कोई चीज खड़े हुए नहीं खानी। पशुवत है, इज जस्ट लाइक एनिमल। और यहां तो सब खड़े खड़े बड़े प्रेम से खड़े खड़े खाते हैं और हाथ भी नहीं धोते। بازار میں کھاتے ہیں ہاتھ کھان دھوتے ہیں, چلتے چلتے کھاتے کھاتے جاتے بکری کی طرح کھاتے ہوئے جاتے. بھاگوت میں لکھا ہے کیول دتی نے, کشپ کی پتنی دتی نے کھانے کے بعد ہاتھ منہ نہیں دھویا, دھویا تھا, اپوتر تھی. اس وقت اندر اس کے گرب میں پرویش کر کے اس کے ایک بیٹے کو سات نے وبھاجن کر دیا. سات رونے لگے, مت مارو مت مارو سات کو, اور سات نے وجر سے توڑا لیکن مرے نہیں. ان پچاس سیون انٹو سیون 49 ماروت بن گئے, کیول اس لیے کہ ہاتھ نہیں دھویا تھا. تو جب اپوتر ہے تب اس کے اوپر آکرمن کیا جا سکتا ہے. بھوت پریت اپوتر کے اندر آتے ہیں, آدمی کو ہمیشہ پوتر رہنا چاہیے. کھائے ہرے کرشنا, بچے لو پاؤں کٹھے کرو, ایسے بیٹھتے ہیں ہرے کرشنا. تو پوتر اندر کو پوتر کرنے کے لیے بھگوان کا نام جپنا, کھانا جتنا ضروری ہے, سونا جتنا ضروری ہے, اتنا بھگوان کا نام جپنا ضروری ہے. اور سب کو جپنا چاہیے. برہما جی گرو کے استھان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نارد جی کو, اور پھر سری بھگوان سری کرشن بھگوت گیتا میں کہہ رہے ہیں یجانام جپ یجسمی, جتنے بھی یجے ہیں ان میں میرا سوروپ بھگوان کہتے ہیں جپ ہے. جپ کا مطلب بھگوان کا نام جپنا, ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے, یہ جپ یجے ہے. گھی ڈالیں گے آگ آگ کے اندر سوہا کریں گے, وہ بھی یجے ہے. لیکن وہ یجے ستیہ تریتا یگ میں ہوتا تھا, اس کے لیے گائے کا دودھ چاہیے. گائے بھی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا, دودھ نہیں ہے تو گھی کہاں سے آئے گا. گائے کا گھی نہیں ملے گا تو یجے کیسے ہوگا. دو چار دن پہلے ایک آدمی مندر میں آیا کہ یہاں گائے کا گھی ملے گا. ہم نے بولا ہم بازار سے لاتے ہیں آسٹریلیا والا, ہم ڈبے میں لاتے ہیں. اب آسٹریلیا والی گائے ڈبے کے اندر ہے, اس کا گھی کیسے کام آئے گا. تو گھر میں ماں گائے کا گھی بناتی تھی, اس سے یجے ہوتا تھا. اور پھر یجے ہوتا تھا کھلا گھر میدان ہوتا تھا وہاں. اب گھر کمرے بند, اس کے اندر یجے کرو گے دھواں ہوگا, اور دھواں ہوگا سب کالا ہو جائے گا. تو اس لیے یجے تو کرنا بہت مشکل ہے کل یگ میں, پھر کون سا یجے کرے. بھگوان کا نام اچارن کرنے کے لیے نہ گھی چاہیے, نہ آگ چاہیے, نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, نہ براہمن کو بلانے کی ضرورت ہے. کیول زبان سب کے پاس ہے, اس سے بھگوان کا نام اچارن کرو, یجے ہو گیا. اور یہ سب یجوں میں سب سے شریشٹھ یجے ہے, بھگوان کہتے ہیں بھگوت گیتا میں. اور پھر شریمد بھاگوت میں 12 اسکند میں سکھدیو گوسوامی کہتے ہیں مہاراج پریشد کل یگ بہت گھور آ گیا ہے, چاروں اور پاپ ہی پاپ کا راج رہے گا. لوگ کل یگ میں رام کہے گے سیا سے ایسا کل یگ آئے گا, مندر خالی ملیں گے, شراب کھانا بھرا ہوا ملے گا. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آج کل بار میں تو جگہ نہیں ہوتی ہے, اور مندر میں ٹیپ کے اوپر آرتی چلتی ہے, اور جو گھنٹی بجتی ہے وہ بھی بٹن دباتے ہیں بجلی کا, اس سے بجتی ہے, بجانے والا آدمی نہیں ہے. یہ کل یگ کا یہ شاستر بول کے گئے, شراب میں خانے بھرے ملیں گے, مندر خالی ملیں گے. اور کل یگ میں کیا ہوگا, بڑے بزرگ جتنے گھروں کے ہیں سب ہریدوار میں گنگا کے کنارے ملیں گے. یہ کل یگ کی ایک بہت بڑی دین ہے, اس کو کہتے ہیں آج کل اولڈ ایج ہوم. اولڈ ایج ہوم کے اوپر لکھنا چاہیے بدماش بچوں کا. میں کہا گجرات میں ایک جگہ ستسنگ انہوں نے رکھا اولڈ ایج ہوم میں. یہ تو اولڈ ایج ہوم, اولڈ ایج ہوم تو اولڈ کیسے, اولڈ ہے تو پھر اس کے بچے کہاں گئے؟ بولے بچوں سے پالے نہیں جاتے. تو اس کا نام اولڈ ایج ہوم نہیں رکھو, बदमाश बच्चों का करतूत। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
एक युधिष्ठिर महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं और कलयुग उधर मिलने आता है, तो पहला प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर महाराज तो नहीं है भीम से कि मैं रास्ते से आ रहा था, एक वेल से एक कुएं से पानी का एक बाल्टी भर के निकाला और बाल्टी एक बाल्टी पानी से एक बकेट पानी से नौ मटके भर गए। बोला बड़ी बाल्टी बड़ी होगी बड़ा बकेट होगा नौ भर गए गुड है। बोला ये बात तो ठीक है, फिर वापस नौ भरे हुए बाल्टी में डाले आधे से कम पड़ा था। बोला ये तो बड़ा आश्चर्य है, एक बकेट से नौ भर गए नौ वापस बकेट में डाले आधी ही नहीं है, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या पूछा वो भी सुना देता हूं। दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं रास्ते से आ रहा था, एक आदमी सुई के सोराख होल ऑफ दी नीडल के अंदर से एलिफेंट को हाथी को निकाला, हाथी पूरा निकल गया पूंछ अटक गई, पूरा हाथी निकल गया और टेल अटक गई नीडल के होल से। हाँ बड़ा आश्चर्य लगा। ऐसे और भी चार प्रश्न है लेकिन मैं दो की बात ही करता हूं अभी। महाराज युधिष्ठिर से भीम कहता ये क्या है कौन था क्या कह रहा था। बोला ये कलयुग था और ये कह रहा था एक बाल्टी से नौ बर्तन भरते हैं, इसका अर्थ है पहले एक घर में बूढ़ा बुजुर्ग होता था बाबा, नौ बेटे होते थे बेटियां होती थी, सबको खिलाता पिलाता पढ़ाता शादी कराता घर बना के देता था। और कलयुग कहता है अभी नौ होंगे इकट्ठे होकर भी एक का पेट पालन नहीं करेंगे काम नहीं करेगा तो बोला निकलो यहां से। ये कलयुग की पहचान, वह नौ लिखा है, एक आदमी नौ का। अभी देख लो आज से 50 साल पहले देखो एक आदमी कमाता था पांच सात आठ बच्चे होते सबका पेट पालता था, पढ़ा लिखा पढ़ाता लिखाता खिलाता घर बना के देता सब कुछ करता था। और अभी सारे के सारे मिलके एक आदमी काम नहीं करता है तो कहते हैं बेकार है। ये कलयुग की पहली पहचान है। बोला हाथी निकल गया पूछ अटक गया ये क्या है। बोला कलयुग के अंदर लोग शादी में तो बहुत खर्चा कर देंगे, बच्चे के जन्मदिन के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर देंगे और कहोगे कि घर मंदिर में एक दिया जलाना है 10 रुपये चाहिए, बोलेगे नहीं है लाखों रुपये मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करेंगे लेकिन धर्म के काम के लिए पूंछ अटक जाएगी हाथी की तो बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं 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 क्या भगवान को कोई जरूरत क्या है। एक आदमी पैसा भगवान के नाम में इकट्ठा करके आता, जब इकट्ठा करके आता था नाम भगवान के में लेकिन खाता खुद था, दूसरा भी ऐसे करता था तीसरा भी ऐसे करता था, तीनों आपस में मिले उसने तुम भगवान के नाम में पैसा लाता है कैसे भगवान को लगाता सेवा है। बोला मैं ऐसे करता हूं एक गोला बनाता हूं धरती के ऊपर, पैसे ऊपर फेंकता हूं, जो गोले में गिरे वो भगवान के, बाहर गिरे वो मेरे। तो बोला कितना गोला बनाता है। बोला मेरे अंगूठी नीचे रख देता हूं, मेरे रिंग रखता हूं नीचे, रिंग में गिरे वो भगवान के, बाहर गिरे वो मेरे। दूसरे बोला तुम ठीक नहीं करते हो तुम ऑनेस्ट नहीं हो। बोला तुम क्या करते हो। बोला मैं भी ऐसे करता हूं, मैं कहता हूं जो रिंग में गिरा वो मेरा बाहर गिरा वो भगवान का। बोला तुम कितना बड़ा गोला बनाता हो। बोला मेरा घर पूरा गोला है उसके अंदर गिरा मेरा बाहर गिरा भगवान का। तीसरे ने कहा आप दोनों ईमानदार नहीं हो ऑनेस्ट नहीं हो। तो फिर तुम क्या करते हो। बोला मैं ऊपर फेंकता हूं भगवान जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो गिरे सब मेरे। ऐसे ऊपर फेंक दिए जिसको चाहिए वो ले लो भगवान आप अपने ले लो बाकी सब मेरे। हमारा हाल ऐसा है कि भगवान के लिए कुछ भी नहीं है सब कुछ हमारे लिए। ये कलयुग की एक बड़ी पहचान है। सोचम हाँ तो बात कर रहे थे कलयुग का ऐसा घोर कलयुग आने की जब बात कही तो परीक्षित महाराज को बहुत हरे कृष्णा परीक्षित महाराज को बहुत कष्ट हुआ। वो धर्मात्मा राजा हैं, वो कहते हैं मेरी प्रजा कलयुग से पीड़ित होगी, मैंने तो कलयुग को मार ही देना था लेकिन कलयुग बच गया तो मेरी प्रजा दुखी होगी, महाराज कोई साधन बताओ कलयुग से कैसे बचे हमारी प्रजा, हमारी जनता, हमारे सब्जेक्ट जो हैं, हमारे सिटीजन, वो कलयुग से कैसे बचे। तब सुखदेव महाराज से के मुख से निकला कलेर दोषे निधे राजन। महाराज परीक्षित कलयुग दोषों का सागर है, निधि कहते हैं सागर को, ओशन है। अरे महाराज ओशन से तर के कैसे पार जाएंगे, स्विमिंग करके कोई ओशन थोड़ी पार करेगा, या मॉरिशस में आप कूदो समुद्र में इंडिया पहुंचोगे इंडियन ओशन में, नहीं जा सकते ना। तो इतने सारे समुद्र कलयुग का दुख का समुद्र को कैसे पार करेंगे, दोष का समुद्र है। दोष का मतलब दोष, कलयुग के दोष का मतलब सिंफुल एक्टिविटीज। महाराज तो बड़े दुखी हो गए परीक्षित महाराज। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहते अस्ति एको महागुण, एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, इतने सारे दोष हैं लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। परीक्षित महाराज कहते जल्दी बोलिए, मेरा दिन बाकी दिन क्या बचा है, कुछ घंटे बचे हैं, तीन चार घंटे के बाद मैं संसार से चला जाऊंगा, मुझे ब्राह्मण ने श्राप दिया है, ब्राह्मण के बच्चे ने, सातवां दिन आज पूरा हो रहा है, तक्षक सांप आएगा मेरे को काटेगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मुझे बताइए, मैं राजा हूं, मैं इसको मानूंगा तो सारी प्रजा मान लेगी। ये भी परीक्षित महाराज गीता की शिक्षा को जानते थे, यद्यदा चलति श्रेष्ठ तत्त एवत्रो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो बड़ा आदमी घर में नियम बनाता है, जैसे खुद करता है ऐसे बच्चे सब करते। आप घर के अंदर मंदिर बनाएंगे, आरती करेंगे तो छोटे बच्चे भी उठ के घंटी बजाना शुरू करेंगे, देखेंगे आपको करते हुए। आप घर में सिगरेट पियेंगे तो बच्चा भी ऐसे करता रहेगा, कुछ उठा के हाथ में ऐसे करके दिखाएगा, जो आप करोगे वही करेगा, उसको और कोई पता थोड़ी है कुछ। आप शराब पियोगे घर में तो वो भी गिलास एक दूसरे को टकरा के पानी पिएगा, चीयर्स करके फिर पिएगा, देख लेना जाके घरों में। टीवी को देख के तो ऐसे करना ही शुरू कर दिया है, तो घर में बड़ा जैसे करेगा ऐसे सब बच्चे करेंगे। तो घर का बड़ा पिताजी गुरु होता है, घर में जैसे वो करेगा ऐसे सारे पूरे बच्चे करेंगे। बच्चा और बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, बच्चों को आप धोखा नहीं दे सकते हो। बाप घर में बैठा था, कोई आदमी बाहर आया पिताजी से, उधार मांगने वाला था, पैसा मांगने वाला था, घर में है गोपाल, गोपाल बेटे को कहता बेटा उसको बोला पिताजी घर पे नहीं है, वो बाहर जाके बोला है पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर पे नहीं है, पिताजी ने बोला है पिताजी घर पे नहीं है। अब बच्चा तो सच बोलेगा, झूठ थोड़ी बोलेगा बच्चा, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, उसको झूठ बोलना नहीं आता। बच्चे को हम धोखा देना चाहते हैं। एक बार माता पिता सिनेमा देखने जा रहे थे, सिनेमा क्या कहते हैं यार, सिनेमा को सिनेमा देखने जा रहे थे। छोटा सा बच्चा कहता है कहाँ जा रहे हैं, बोला सिनेमा, बोला मुझे ले चलो, बोला नहीं तुम छोटे हो नहीं जा सकते हो, क्यों, बोला सिनेमा में केवल मूंछ होती है तब आदमी जाता है। बच्चा देखता है अपनी मां की तरफ, बोला इसकी मूंछ कहां है इसको क्यों ले जा रहे हो, हाँ माता की मूंछ कहां है इसको क्यों ले जा रहे हो। बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप उसको क्या बोल रहे हो। घर के अंदर बच्चे अच्छी तरह से देखते हैं कि आप अपने बड़ों का कैसे सम्मान करते हो, आप जब बड़े होंगे तो बच्चे वैसे ही करेंगे, वो आपको देखते हैं अभी से उसके कंप्यूटर में फीड होता है, आपके आचरण को देख के वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, जैसे आप करोगे वैसे वो आपसे करेंगे। इसलिए कहावत है कि जो बच्चे की उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाता है बुढ़ापे में, वो बूढ़े की लकड़ी पकड़ के खड्डे में गिरने से बचाएगा। तो उंगली पकड़ के बच्चों की मंदिर में ले जाओगे तो बच्चे आपकी लाठी पकड़ लेंगे बुढ़ापे में, आपने संस्कार उनको नहीं दिए तो फिर वो आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आपने जो किया होगा आपको वो मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, अस्ति एको महागुण, क्या महागुण है, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेता। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन संसार के बंधन से मुक्त करके परम धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज तक पहुंचा देगा। तो ये भागवत में प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहिए। वो ब्रह्मा जी और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इस नाम के मंत्र का उच्चारण करते हुए कहते हैं, पृथ्वी पे आचे यत्र नगराधि ग्राम, इस पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, जितने भी सिटीज हैं, जितने भी विलेजेस हैं, पूरे दुनिया के अंदर उन सब में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण होगा, ये भगवान ने कहा है। तो पूरे दुनिया में होगा, तो मॉरिशस भी इस दुनिया के अंदर है, तो यहां भी भगवान के नाम का प्रचार होगा। आप इसमें भाग लोगे तो आपको फल मिल जाएगा, अब हो ही रहा है, आप इसका लाभ ले लो। बरसात बरसती है तो बीज बोलो तो कुछ उगेगा, बरसात खत्म हो जाएगी फिर बीज डालने से कुछ नहीं होगा। अब भगवान का कीर्तन हो रहा है तो लाभ ले लो, कलयुग को कोई नहीं रोक सकता, कलयुग और खतरनाक बढ़ेगा आगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी कलयुग में जन्म लेने से पहले बच्चों को तो मां बाप मार देते हैं एबॉर्शन के नाम में, आगे चल के बड़े बुजुर्गों को मारेंगे। आज मैं सुबह पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में 75 में प्रभुपाद जी कह रहे हैं अफ्रीका में आज भी लोग अपने दादे को, बूढ़ा जो हो जाता है उसको छत के ऊपर से 3-4 बार नीचे गिराते हैं और फिर बड़ा फेस्टिवल करते हैं कि दादाजी अब मर रहे हैं हमारे सामने, देखो कैसे ऊपर से गिर के मरता है, और फिर उसको खाते हैं। और प्रभुपाद जी हंसते हुए कहते हैं वो दादा को नहीं, आप गोरों को भी खाना चाहते हैं, कभी जाओ बोलो, हाँ कभी हमको भी पकड़ते और अच्छी तरह से खाते। तो कल जो इतना भयानक आएगा कि लोग घर में बूढ़े बुजुर्ग को मार देंगे, फीस्ट करेंगे, फिर मरने के बाद हम भी फीस्ट करते हैं 12वें के दिन, लेकिन वो उसी को खा जाएंगे। इसका अर्थ ये समझने का, हम सब बूढ़े होने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि जो बूढ़े हैं वही बूढ़े हम इतने ही बड़े रहेंगे, हमारे को भी बूढ़ा होना पड़ेगा एक दिन। ये जो बच्चे यहाँ लोग बैठे हो ना, ये दादाजी बैठे हैं ना, दादाजी को देखते हैं आप सब ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो 60-70 साल के बाद आप भी ऐसे हो जाएंगे, सबको ऐसे होना पड़ेगा। ये जीवन रोज बीतता जा रहा है सबका, छोटे बड़े हो रहे हैं, बड़े बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े भगवान के तरफ जा रहे हैं, जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम शरीर की तपस्या की बात कर रहे थे, भगवान की पूजा, गुरु की पूजा, ब्राह्मण का सम्मान, बड़े बुजुर्ग, दादा पापा बाबा मामा दादा चाचा गुरु बड़े बुजुर्ग पिता आदि की सेवा, माता की, शौचम और पवित्रता, ये शरीर की तपस्या में आते हैं, ब्रह्मचर्य आदि और भी है। वाणी की तपस्या क्या है, मीठा बोलना, सत्य बोलना, और दूसरे के हित में हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। सोचो कि ये मैं कहने जा रहा हूं इससे दूसरे का दिल तो नहीं दुखेगा, दिल दुखता है तो मत बोलो, जो बोल रहे हो ये सच है क्या, पता नहीं मैं तो सुन के आया हूं, तो सुन के आया उससे बोलने से क्या फर्क पड़ता, तुमने देखा बड़ा देखा नहीं। तो वाणी का, जबान की तपस्या क्या है, मीठा बोलना, हितकारी बोलना, दूसरे का भला हो ऐसे बोलना, और सत्य बोलना, और चौथा है स्वाध्याय, शास्त्र का अभ्यास करना है, वाणी का तपस्या है, ये वाणी की तपस्या। सबको सत्य बोलना, हम क्या बोलते हैं पता है, दूसरे की बुराई करने में बड़ा मजा आता है हमको, हाँ आज उसकी बुराई करनी चाहिए अच्छी तरह से, ये हुआ दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं, कहते 32 दांत भगवान ने दिए हैं, 32 बार सोचो फिर जबान को हिलाओ, नहीं तो मत हिलाओ। थिंक 32 टाइम्स बिफोर यू स्पीक, इज इट ऑफ एनी यूज? शब्द एक भी जबान से निकल गया वापस नहीं आ सकता है। तीर से निकला, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। और शब्द का घाव गोली और तीर के घाव से ज्यादा गहरा होता है और कभी नहीं भरता। चाकू लग जाएगा ना, हील हो जाएगा वो। जबान से किसी को कभी कड़वा बोला होगा, हील कभी नहीं होगा। वाणी का वचन, दुर्वचन कभी लोग भूलते नहीं है, इसलिए कभी भी दुख किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए। यस्मान उद्विजते लोको लोकान द्वैज्वते, यह भगवद गीता में कौन भक्त भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है, जिस जो किसी को दुख नहीं देता। मन कर्म वचन से किसी को दुख नहीं देता, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मन का तपस्या क्या है? मौनम। लोग समझते हैं मौनम जबान की तपस्या है, बोलना नहीं मौन है, नहीं नहीं, मौनम दिमाग माइंड का तपस्या में, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड इज साइलेंस, मौनम। मन चंचल नहीं होना चाहिए, जबान नहीं, जबान की तपस्या नहीं है मौन। बहुत से लोग कहते हैं आज मेरा मौन बोलते मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो कॉपी और पेन रखते हैं और देखते हैं हमारे लिए दो चाय पर ले आना, अरे मौन रखा हुआ है लेकिन कॉपी के ऊपर लिख के देते हैं ये काम करके, ये मौन नहीं। मौन दिमाग का है, भगवद गीता में लिखा है मौनम। हरे कृष्णा, मैं मौनम कह रहा हूं, ये बंद हो जा रहा है। तो भगवद गीता को ठीक तरह कभी समझना चाहिए, जीते जी हमको सुखी कैसे रहना है। जैसे जैसे रामायण के अंदर इस शरीर से हमको क्या मर्यादा पालन करनी है उसकी शिक्षा है। पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, ये रामायण की शिक्षा है। ये हमारे जीवन में धर्म कैसे पालन करना है शरीर का, भगवद गीता में आत्मा के धर्म की शिक्षा है। क्या आत्मा का धर्म क्या है? शरीर के धर्म की शिक्षा थोड़ी कम है भगवद गीता में, रामायण में बहुत विस्तार से, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा किसका जो जो धर्म है वो भगवान की सेवा करना है, भगवान से प्रेम करना है। एक ही धर्म दुनिया में है और वो धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। जो भी धर्म भगवान को जानता है कौन भगवान है, भगवान की सेवा करके भगवान से प्रेम करना सिखाता है, वो एक ही धर्म दुनिया के अंदर। एक भगवान है, एक ही धर्म है, इसलिए भगवद गीता के लिए लिखा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आप चाहते हो कि कलयुग में टाइम हमारे पास नहीं है, एक ही कोई छोटा सा शास्त्र हो पढ़ लें, तो आप भगवद गीता को पढ़ लो, सारे शास्त्रों का सार है। जो सब शास्त्रों में है वो तो इसमें है ही, जो और कोई नहीं कहीं नहीं मिलेगा वो भी भगवद गीता में मिलेगा। गीता सुगीता किम नहीं शास्त्र विस्त्री, गीता के बाद और किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, इसके अंदर सब कुछ सब शास्त्र समाये हुए हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान का शरण लेना है तो श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं माम एकम शरणम वर्ज, अकेला मेरा शरण ले लो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको पाप से मुक्त करूंगा। एको देवो देवकी पुत्र एक एव, एकम मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र जपना है, ज्यादा नहीं आता है, पढ़े लिखे नहीं हो, संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा भी राजी, भागवत भी राजी, सुखदेव महाराज भी राजी, भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति केवल एक ही मंत्र जपने से। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही काम करने से सारे काम हो जाएं तो वो भगवान की सेवा करनी चाहिए। हर घर के अंदर भगवान का छोटा मंदिर बना दीजिए, सीताराम लक्ष्मण हनुमान को बिठा दीजिए, राधा राधा श्याम को बिठा दीजिए और रोज घर के अंदर जो भोजन बनता है भगवान को अर्पण करने वाला वो भगवान को भोग लगाओ और सारे परिवार के साथ खाओ। ये समझ लो कि ऐसा राम बाण है जो आपके प्रेम को बढ़ाएगा और सारे दुख को नाश कर देगा। और भोजन जब भगवान को भोग लगता है तब सारे परिवार के बैठ के साथ में 10 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन कर लो और फिर साथ बैठ के प्रसाद खाओ। भगवान के नाम का कीर्तन दवाई है और भगवान का प्रसाद डाइट है। ये दोनों खाने से आदमी कभी रोगी नहीं होगा, न शरीर का रोग होगा और न आत्मा का कभी पतन होगा। दो ही काम करो, जबान के दो काम है। भक्ति जबान से शुरू होती है, जीभा सबको भगवान ने दी है। एक भगवान का प्रसाद खाओ, एक भगवान के नाम का उच्चारण करो, आपका जीवन सफल होगी। कलयुग को नहीं रोक सकते लेकिन आप अपने आप को कलयुग के प्रभाव से बचा सकते हो। जैसे कोई आदमी बरसात को रोक सकता है, आपके तो मॉरिशस में हर 15 मिनट के बाद कहीं ना कहीं बरसात जरूर होती, वर्षा होती है। कोई रोक सकता है बरसात को?
अभी कम है।
गर्म गवर्नमेंट रोक सकती है बरसात को?
हाँ,
कोई नहीं रोक सकता है ना। लेकिन आप भीगने से बच सकते हैं, एक छाता तो खरीद सकते हैं ना। 100 रुपये का अम्ब्रेला खरीदने से आप तो भीगने से बच जाएंगे ना, बरसात तो नहीं रुकेगी। ऐसे ही कलयुग नहीं रुकेगा, लेकिन 10 रुपये का माला ले लेंगे तो आपका छाता हो गया, आप कलयुग के भीगने से बच जाओ। एक माला गले में डाल दो, जैसे छाता उठा के जाते हो कि नहीं, रोज काम पे जाते हो, छोटा छाता होता है कि नहीं होता है आपकी बैग में? हाँ, ऐसे करने के लिए एक माला भी साथ में रख लो, ये भी छाता है कलयुग के प्रभाव से बचने का। बस ये काम करो, सुखी हो जाओगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? सत्र जाकर ये तीनों श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ के समझने का प्रयास करो। ये जीते जी भगवद गीता की शिक्षा अपने घरों में कैसे होनी चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण ने सिखाइए। हरे कृष्ण। 45 मिनट हो गए, ओके। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा?
तरह